दोस्तों, SBS हिंदी पर पिछले अंश में मैंने आपकी मुलाकात करवाई थी चिंतन पंड्या के साथ, जो एक उभरती प्रतिभा हैं भारतीय रंगमंच की। देश दुनिया में भारत के विविध नाट्य प्रकारों का वो मंचन करते हैं, वो उनको परफॉर्म करते हैं और लोगों का दिल जीतते हैं। चाहे वो हमारी बॉलीवुड स्टाइल का ड्रामा हो या फिर हमारा फोक फॉर्म जो है, जैसे कि गुजरात की भवाई है, वो सभी को मॉडर्नाइज्ड वर्जन में वो परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। चिंतन से बातचीत का दौर आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि उनको क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था जब उन्होंने नाट्य को, रंगमंच को फुल टाइम करियर के तौर पर चुना था, और आने वाले लोग जो हैं, जो नई पीढ़ी है, जिनको थिएटर के फील्ड में फुल टाइम करियर बनाना हो, वो उनको क्या सलाह देते हैं। चिंतन, SBS हिंदी पर आपका स्वागत है। चिंतन, ये बहुत ही अनोखा फील्ड है, या फिर यूं कहें कि आमतौर पर जो यंगस्टर्स हैं वो रंगमंच को फुल टाइम प्रोफेशन लेना नहीं पसंद करते, तो क्या आपको भी कोई चैलेंजेस आई थी जब आपने इसको एज अ करियर चुना था, और अगर किसी को इस फील्ड में आना हो तो आप क्या सलाह देंगे?
चैलेंजेस तो पहले भी थी और आज भी है, चैलेंजेस हमेशा ही रहती है, क्योंकि कलाकार जो होते हैं भारत में, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा सीन है कि अगर आप थिएटर ही करते हो तो सर्वाइव करना मुश्किल भी हो पाए, क्योंकि थिएटर में तैयारी वगैरह में समय ज्यादा रहता है और उस हिसाब से सामने आपको महीने में उतने सारे शोज भी नहीं मिलते हैं, और प्रेक्षकों को भी जो मतलब बॉलीवुड फिल्म्स ने जिस तरह से हमारे मानस पर यहाँ पर जगह ले ली है, मुझे लगता है कि बाकी सारी कला जो है वो एक ही मार्जिन में चली गई है। तो प्रेक्षकों को भी यही अपेक्षा रहती है, अगर कोई बॉलीवुड का कलाकार आता है और काम करता है तो वो लोग देखने जाएंगे, कोई अननोन चेहरा है तो उतना जल्दी स्टिमुलेट नहीं भी होते हैं, पर अच्छा काम करते हो तो धीरे 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 वो उसके रेपरकशन भी होते हैं, फिर लोग देखने आते हैं। वो मेहनत का काम है काफी, और धीरज का भी काम है, सिर्फ थिएटर करते हैं तो। मैं जो भी यंगस्टर इसमें आना चाहते हैं उनको ये सलाह देता हूँ कि भाई ये बहुत अच्छी चीज है और आप जरूर आए, पर साथों साथ आप एक्सपोजर भी देके आए, क्योंकि काफी सारे यंगस्टर्स हमारे यहाँ पर अभी ट्रेनिंग में भी आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, उनमें भी एक चीज कॉमन देखने को मिलती है कि भाई वो लोग अपने फिजिकल अपीयरेंसेस, बॉडी बिल्डअप, वो सब पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो लड़के होते हैं। लड़कियां भी अलग तरह से काम करती हैं, पर उनका रीडिंग जो है, एक्सपोजर है किसी विषय वस्तु पर, उनका जो ज्ञान है वो बहुत कम है, पढ़ते बहुत कम है आजकल लोग, तो ये चीज जो है वो सरल नहीं है, क्योंकि मेहनत तो रहती है पर शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर मेहनत रहती है। एक कलाकार जो होता है, खासकर अभिनेता जो होता है, वो एक जागृत मानस होता है, उसको पता है कि उसके आसपास क्या होता है, उसके समाज में, उसके देश में, उसकी संस्कृति में क्या सजाना पड़ा है, उसका इतिहास क्या है, वो आगे वाली पीढ़ी तक क्या ले जाना चाहता है। और मैं ये सब कहते भी ये नहीं कहना चाहता कि हर एक अभिनेता जो है वो कोई एजेंडा लेके आए या कोई झंडा लेके खड़ा हो जाए, पर एक वेल जेड, वेल एजुकेटेड, वेल इन्फॉर्म्ड इंसान जो होता है वो एक अभिनेता वो सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि जो भी उसने जाना है, जो भी पहचाना है, वो अनुभव से भी उसने प्राप्त किया है या कहीं पर पढ़ के या किसी से सुन के, वो जो उसकी क्यूरियोसिटी है जिसके कारण वो सभी चीज जानता पहचानता है वो उसके अंदर रहती है, और फिर कभी ना कभी वो जब परिपक्व होती है तो वो कहीं ना कहीं स्टेज पर या फिल्म के पर्दे पर बाहर आएगी। वो उसको जब भी कोई किरदार वो निभाएगा, कोई भी पात्र वो परफॉर्म करेगा, तब उसके अंदर वो जो समझ है किसी भी चीज की, वो पात्र की, वो बहुत जरूरी है, वो इंडिस्पेंसिबल है, और वो ऐसे ही बाहर आ सकती है, वो बिना जाने ऐसे ही इमिटेट करके या फेक करके नहीं बाहर आ सकते। तो काफी मेहनत है, काफी समझना, जानना, पहचानना है, कभी कभार ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी, पर आप आइए जरूर, क्योंकि जब डुबकी लगानी है तो सीधा समंदर में क्यों ना लगाए। और फिर हाँ, धीरज भी रखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रातों रात आपको सफलता मिल जाएगी। कभी कभार काफी निष्फलता के बाद भी कुछ अच्छा काम करने को मिले, या कभी कभार पैसों की भी तकलीफ पड़े, क्योंकि फाइनेंशियली भी दिस इंडस्ट्री इज नॉट ऑलवेज वेरी साउंड। पर किसी भी चीज की चिंता करे बगैर अगर आप आते हैं तो एक निष्ठा से काम कीजिए, और अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपकी रिकग्निशन जरूर होगी।
चिंतन, भविष्य की क्या योजना है, कौन से नई चीजें लेकर आ रहे हैं आप नए साल में?
भविष्य में अभी हम लोग तीन अलग अलग चीज पर काम कर रहे हैं। एक है, हम दरियालाल करके एक नवल कथा थी गुणवंत राय आचार्य की, उसका वाचिक हम कर रहे थे, जो अब हम लोग स्टेज पर शो के बतौर ले जाना चाहते हैं। तो वो पूरा म्यूजिकल रहेगा, उसको हम लोग तीन भाषा में तैयार कर रहे हैं, गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी, जिससे हम लोग पूरी दुनिया में वो ले जा सकें। दूसरा है, एक बच्चों के लिए हम लोग परफॉर्मेंस तैयार कर रहे हैं, और तीसरा जो है वो पानी की जो समस्या है उसके ऊपर हम लोग एक पपेट शो तैयार कर रहे हैं स्विट्जरलैंड के आर्टिस्ट से मिलकर। तो तीन अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में है। अभी अगले साल पहला खुलेगा शायद मई जून में दरियालाल, उसके बाद दूसरे परफॉर्मेंसेस भी आएंगे एक के बाद एक।
चंदन, हम आशा करते हैं कि आपके आने वाले जो भी प्रिपरेशंस हैं वो सभी को बहुत सारी सफलता मिले, और आप बहुत जल्द ही भारतीय रंगमंच को लेकर ऑस्ट्रेलिया की भी मुलाकात पर आएं। SBS हिंदी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका धन्यवाद, और मैं जरूर आऊंगा, बहुत जल्दी आना चाहता हूँ, और वहाँ पर भी आके आपके शिक्षकों से भी मिलना चाहूंगा।